सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल, सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में। एक बार पुनः आप सभी का हमारा पूरा जीवन खुशहाली से भर जाएगा, हमारी तो यही आशा है, यही उम्मीद है, यही शुभकामना है। समाधान का लक्ष्य यही है कि आपका जीवन ऐसा ही खुशनुमा हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं। दाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सारी समस्याएं लोगों की तो हैं ही, लेकिन जिस ज्ञान चक्षु की बात लगातार आप कर रहे हैं दाता जी, वो ज्ञान चक्षु कैसे हमेशा खुली रहे? ऐसा होता है कि आंखें कई बार बंद हो जाती हैं, और ये जो ज्ञान चक्षु है जो दिखाई नहीं देती है वो तो ज्यादातर बंद ही हो जाती है। ये चक्षु खुले रहते हैं, वो चक्षु बंद हो जाती है, ये हमेशा कैसे खुली रहे ताकि हम उस परम सत्ता की अनुभूति करते रहे?
देखिए, ज्ञान चक्षु है, ये तीसरा नेत्र है, और इसलिए भगवान को ज्ञान चक्षु विधाता कहा जाता है। वही ये दिव्य नेत्र हमें प्रदान करता है। लोगों ने चित्रों में इसको यहाँ दिखा दिया है,
शंकर जी को हम देखते हैं।
हाँ, और जैन तीर्थंकरों के जो चित्र बनाए जाते हैं उनमें भी अनेक जगह वो तीसरा नेत्र खुला हुआ दिखाते हैं। वास्तव में यहाँ कोई नेत्र नहीं होता, बुद्धिस्ट के यहाँ भी वो यहाँ कुछ कुछ करते हैं तीसरे नेत्र को ओपन करने के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है। जिस मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान भर जाता है, यानी जिसकी बुद्धि सद विवेक से और दिव्य विवेक से भरपूर हो जाती है, उसकी ये बुद्धि ही तीसरा नेत्र कहलाती है। तो हमारा तीसरा नेत्र खुला रहे, माना हमारी बुद्धि में ज्ञान की अवेयरनेस रहे, ज्ञान सदा हमें याद रहे, परिस्थिति और दुनियावी बातें ज्ञान को भुला न दें। हो ये रहा है बहुत सारे लोगों के साथ कि जब वो कार्य व्यवहार में व्यस्त होते हैं, या समस्याएं जब उनको अपने अधीन कर लेती हैं, या जब उनका मन व्यर्थ में भटकने लगता है, या आजकल टीवी और ये वो बहुत कुछ जब देखते हैं लोग, तो ज्ञान विस्मृत हो जाता है। इसको ही कहा जाता है कि तीसरा नेत्र बंद हो गया। तो रोज सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुने, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़े, और बुद्धि में ज्ञान को स्मरण रखें। ये तो संभव नहीं कि सारा दिन कोई ज्ञान स्मरण रखेगा, लेकिन ऐसा लक्ष्य जरूर रखें कि कुछ ज्ञान की बातें हमारे चित्त में इतनी गहराई से उतर जाएं कि जब वैसी बातें सामने आए तो वो हमें याद आ जाए। ये सब जगह होता है ना। मान लो हम जा रहे हैं, रास्ते में गड्ढा है, हम तुरंत रुक जाएंगे। ये तो नहीं ना हमारे नेत्र बंद हो गए, हमारे नेत्रों में ये भरा हुआ है, हमारे विवेक में भरा हुआ गड्ढा है, चोट लगेगी, गिरोगे, एक्सीडेंट होगा, इसलिए बच के चलो। खाने पीने में कुछ ऐसी चीज आ गई, हमारा बुद्धि का नेत्र खुला रहता, ये नहीं खाना भाई, इसमें ये चीज ज्यादा। हर जगह हम हर फील्ड में देख सकते हैं, हमारा नेत्र खुला रहता है। बस जरूरत इस चीज की है, ज्ञान के नेत्र में ज्ञान की सद्विवेक की कुछ बातें हम इस तरह भर दें कि जब परिस्थिति आए हमें वो याद आए। मान लो कोई अनहोनी घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, अब किसी का एक्सीडेंट ही हो गया। अब एक्सीडेंट होना बड़ी दर्दनाक घटना होती है, न जाने किसका कौन प्रियजन था, किसका इकलौता बच्चा था, किसका कमाने वाला व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। एक उस सीन को देखना, दूसरा अब कमाने वाला कोई नहीं रहा, या बच्चा नहीं रहा, मां निसंतान हो गई, कमाने वाला कोई नहीं, हम बेसहारा हो गए, दो चीजें होती हैं। अब ये चीजें ज्ञान के तीसरे नेत्र को बंद कर सकती है, इनका चिंतन बहुत चलेगा। लेकिन हमें ज्ञान की स्मृति रखनी है, ड्रामा का विशेष ज्ञान हमें प्राप्त है। हम ये संकल्प कर लें कि जाने वाले का समय पूर्ण हो चुका था हमारे पास, अब उसको जाना ही था। वो भगवान की संतान है थी, उसके पास चली गई, हमारा कोई सहारा नहीं रहा, ऐसा भी कुछ नहीं, भगवान हमारा सहारा है। एक जगह से कोई चीज नहीं मिल रही है, दूसरा मार्ग हमारा खुल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसको कहेंगे ज्ञान नेत्र खुला रहना। लेकिन बहुत निगेटिव हो जाना, बहुत व्यर्थ में चले जाना, इससे ज्ञान विस्मृत हो जाएगा, इसको कहेंगे ज्ञान का नेत्र बंद हो जाना।
जी, तो आवश्यकता है कि हम अपने ज्ञान चक्षु को खुली ही रखें, ताकि हमारा जीवन बहुत सहज और सरल हो जाए और परमात्मा पिता भी हमें जो देना चाहते हैं वो चीज हमें दे सके। और वैसे भी कहते हैं व्रता जी कि विवेक पूर्ण यदि कोई कार्य किया जाए तभी हमें उसमें सफलता मिलती है और तभी वो कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। और यदि विवेक पूर्ण न हो, विवेक यदि मारी गई हो, तो कार्य वैसे भी संपादित ठीक ढंग से नहीं हो पाता। तो हम इस ज्ञान के नेत्र को खुली अवश्य रखें। दादा जी, मेल्स हमारे पास आए हुए हैं। ये पहला मेल मैं ले रहा हूं, ये है ब्रह्मा कुमार प्रदीप जी, और ये पूछ रहे हैं कि कई लोग ऐसा पूछते हैं कि यदि हम दूसरों को सकाश देंगे तो क्या हमारी शक्तियां कम हो जाएंगे। वो ऐसा सोचते हैं कि योग में बाबा आप इनको सकाश दो, तो क्या उचित है? क्या हमें बाबा से शक्तियां लेकर सकाश देनी चाहिए या डायरेक्ट बाबा से ही दिलानी चाहिए? ये ब्रह्मा कुमार प्रदीप जी हैं रायपुर से।
राजयोगियों का ये प्रश्न रहता है कि हम दूसरों को अच्छे वाइब्रेशंस देंगे तो क्या हमारी शक्तियां कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देने से ये आंतरिक शक्तियां, शांति, खुशी बढ़ती है। देने से कोई चीज कम नहीं होती। कहां से ये बात लोगों की चली है वो भी मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। जो लोग रेखी करते हैं वो भी ऊपर से, जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, लेके फिर देते हैं
जी।
तो उन्हें अच्छी फीलिंग होती है। विदेशियों में कुछ ऐसे हीलर हुए जो अपनी शक्तियां यूज करते रहे और बाद में बिल्कुल वीक पड़ गए, उन्हीं बीमारियों के कुछ शिकार हो गए।
तो वो लेते थे?
वो लेते नहीं थे, उनको लेना नहीं आता था। हमारा जो राजयोग है ये है सीधा ऑलमाइटी से कनेक्शन, उसकी शक्तियां हम में आती रहती हैं, हम दूसरों को देते हैं। हमारा सकाश देने का तरीका भी यही है, हम अपना कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ेंगे, उससे हम वाइब्रेशंस लेंगे और फिर मस्तक से, नैनों से, हाथों से, अपनी गुड विशेष से हम दूसरों को वाइब्रेशंस देंगे। रही बात ये, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बाबा को कहें आप दे दें, तो भला बाबा हमारे कहने से थोड़ा ही वाइब्रेशंस देता, उसके तो बच्चे हैं, जो उसे कार्य करना वो स्वतः ही करता रहता है। लेकिन बाबा भी अपने वाइब्रेशंस हमारे द्वारा दिलाता है। ये बात बहुत सहज रूप से समझने की है कि हमारे वाइब्रेशंस उसे ही जाएंगे जिससे हमारा कनेक्शन होगा। अगर किसी को भगवान से वाइब्रेशंस प्राप्त करने हैं तो वो तभी मिलेंगे जब उनका उससे कनेक्शन होगा। हम कह दें बाबा इन्हें वाइब्रेशंस दे दें, और मान लो हमारे कहने से बाबा वाइब्रेशंस देने भी लगे, लेकिन वो उनको जाएंगे कैसे? उन्होंने तो अपना कनेक्शन तोड़ा हुआ है। इसलिए हम उन्हें आत्मा देखकर, क्योंकि उनसे हम कनेक्टेड हैं, हम उनके पूर्वज हैं, हम उनके इष्ट देव देवियां हैं, इसलिए वो सूक्ष्म रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम बाबा से लेंगे और हम उन्हें देंगे। दूसरी
बात, वैसी बात होगी भ्राता जी, शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हर एक के घर में यदि टेलीविजन सेट है भी तो डायरेक्ट वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक टावर के थ्रू वो कनेक्टेड है जिससे कि उन तक वो पहुंच रही है।
वो जो रिले किया जा रहा चाहिए वो सैटेलाइट को जा रहा है
जी,
टावर से उसे कैच करके
वहां पहुंचा रहे हैं।
तो यही विधि सब जगह काम करेगी, डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता। वैसे भी बीज का अगर सब कुछ जाना है तो जड़ों के और तनों के माध्यम से ही शाखाओं में या एक एक पत्ते में जाएगा। जो राजयोग कर रहे हैं वो परमात्मा के माध्यम बन जाते हैं और उनके माध्यम से ये वाइब्रेशन संसार में जाते हैं। एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा, हम निरंतर प्रकृति से भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमारा देह ही प्रकृति से प्राप्त हुआ है। हमारे चारों ओर जो दिखता है हमें, चाहे वो हवा है, चाहे वो प्रकाश है, चाहे वो कुछ भी है, वो सब प्रकृति है। प्रकृति से हम निरंतर जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बात सभी को बहुत अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। जितना हम योग युक्त रहते हैं, जितनी अच्छी हमारी प्योरिटी है, जितना सुंदर चिंतन हम करते हैं, उसके वाइब्रेशंस को ये प्रकृति ऑटोमेटिकली ग्रहण करती जाती है। इसलिए एक कमरे में मान लो एक योगी रहता है और उसका चिंतन भी बहुत सुंदर है, उसकी प्योरिटी बहुत सुंदर है, तो उसके वाइब्रेशंस इन दीवारों में भी समा जाएंगे, वहां घड़ी होगी उसमें भी समा जाएंगे, जो कपड़े वहां रहे होंगे उनमें, बर्तनों में, सब्जियों में,
कन्याकुमारी में भ्राता जी विवेकानंद रॉक है, वहां पे एक कमरा है जिसमें शायद विवेकानंद जी थोड़े समय रहे हुए थे,
3 दिन तक तपस्या,
तो वहां भी अब तक इतना डीप साइलेंस है, वो वाइब्रेशंस लोग फील करते हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं शायद वो योगी के कमरे की बात मुझे अचानक वहां की याद आ गई।
मैं भी वहां गया था और हम लोग भी वहां बैठे, क्योंकि हम लोग तो राजयोग करते ही हैं, तो हम बहुत देर बैठे और हमने देखा कि वहां जाते ही बुद्धि बहुत जल्दी एकाग्र हो जाती है। तो ऐसे ही ये हमारे वाइब्रेशंस काम करेंगे। हमें ये एक सिंपल रूप से याद रखना है, जितना अच्छा हम योग करते रहेंगे उतने ही वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली भी सबको जाते रहेंगे और पर्पजली भी हमें किसी व्यक्ति को या किसी स्थान पर देने भी चाहिए।
बिल्कुल। तो भ्राता जी ये बात स्पष्ट हो गई कि हम यदि देते हैं तो हमारी शक्तियां नष्ट नहीं होती हैं, और वैसे भी अध्यात्म का सिद्धांत ये कहता है भ्राता जी कि जितना दोगे उतना बढ़ता जाए। ये तो शायद स्थूल चीजों से जुड़ी हुई बात है कि चलो मेरे पास 1 रुपया था, मैंने आपको दे दिया तो मैं कंगाल हो गया, लेकिन यदि मैं आध्यात्मिक रूप से खुशी, शांति, शक्ति यदि किसी को देता हूं तो मल्टीप्लाई ही होता चला जाता है।
एक चीज और इसमें जानने योग्य है, मान लो हम किसी आत्मा को शांति के वाइब्रेशन दे रहे हैं, कई लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे जा भी रहे हैं या नहीं, इसका प्रूफ क्या है हमारे वाइब्रेशन जा रहे हैं। जब हम बहुत डीपली किसी को शांति के वाइब्रेशन देंगे तो हमारा चित्त गहरी शांति की अनुभूति में चला जाएगा, ये उसका प्रूफ होगा कि हमारे वाइब्रेशंस वहां जा रहे हैं। तो देखिए, देने से हमारी तो कई गुनी बढ़ गई शांति, तो देने से हमेशा बढ़ता है, ये संकल्प निकाल देना चाहिए कि हमारी कम होगी।
बिल्कुल भ्राता जी, ये जो शब्द है सकाश, मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वाकिफ नहीं है कि ये सकाश ये है क्या, जो चर्चा हम कर रहे हैं, कृपया थोड़ा सा स्पष्ट कर दें ताकि वो भी समझ सके।
ये सब तो भिन्न भिन्न भाषाओं के होते हैं और किसी भी संगठन में जो एक शब्द प्रचलित हो जाता है उसको सब प्रयोग करने लगते हैं। दूसरों को वाइब्रेशंस देना, इसको दूसरे शब्दों में पहले से करंट भी कहते थे, दूसरों को स्पिरिचुअल करंट देना, अच्छे वाइब्रेशंस देना, किरणें फैलाना, इसको सकाश देना कहा जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे भाई बहने भी कर सकते हैं, और जो सुबह और शाम ये कर रहे हैं, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे का योग, तो ये भी वास्तव में एक प्रकार का सकाश देना है।
ये सकाश देना ही है कि हम उन आत्माओं को जिनकी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, जहां मेडिकल साइंस भी हाथ खड़ा कर देती है, जहां मनुष्य हर तरह से हिम्मत हार जाता है, ऐसे में उन आत्माओं को हमें बल देना, विशेष रूप से शक्तियों के वाइब्रेशंस देना, इसकी बहुत जरूरत है। शांति दें, वो शांति तो थोड़ी अल्पकालीन भी हो सकती है, लेकिन हम ऐसी शक्तियों के वाइब्रेशंस दें ताकि मनुष्य के अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि वो आने वाली समस्याओं को बड़े आनंद पूर्वक फेस।